ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। लेकिन मन में एक विचार चल रहा था कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा ये रिजल्ट है या पुरुषार्थ है, क्या कहेंगे? ये रिजल्ट है या पुरुषार्थ है? हाँ, दोनों है। दोनों तो नहीं हो सकता है ना, एक ही होना चाहिए। या तो रिजल्ट होगा या तो पुरुषार्थ होगा। ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। इसीलिए गीता के भी अंतिम शब्द जो है, 18 अध्याय के भी अंतिम शब्द जो है, कि अर्जुन ने कहा अब मैं नष्टो मोहा हो गया, तो ये रिजल्ट है फाइनल। अगर ये रिजल्ट है तो उसका पुरुषार्थ क्या है? कि जिस पुरुषार्थ से हमें ये रिजल्ट को पाना है, तो संपूर्ण गीता को देखा जाए, ये बाबा के ज्ञान को भी अगर देखा जाए, तो बाबा हमेशा हम बच्चों को जो पुरुषार्थ बताते हैं और उस पुरुषार्थ में जो विधि बताते हैं, तो गीता में भी वो विधि बताई है। गीता के अंदर पांचों विकारों को दो शब्द में समेट लिया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये पांचों विकारों को दो शब्द में समेटा है, वो है हाँ? वो है पांचों विकारों को दो शब्द में समेटा है, राग और द्वेष, राग और द्वेष के रूप में। भावार्थ ये कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा दो विषय है। नष्टो मोहा, तो कितनी जगह हमारा मोह कहो या राग है, कहां कहां है? खाली व्यक्तियों से है, उसको समाप्त करना है, या और भी जगह है हमारा मोह जुड़ा हुआ, कनेक्टेड, कहां कहां है? हाँ, पहला मोह हमारा स्वयं से है, अपनी देह से है ना? और जब स्वयं से मोह होता है तो उसको कहा गया स्वार्थ, स्वार्थ है ना, स्वअर्थ, स्वार्थ। और जब स्वयं के साथ का मोह, जब उस मैं के साथ मोह हो जाता है, तो उसको कहा गया अभिमान, है ना? मोह तो एक फाइनल रिजल्ट जो कही कि इन सब बातों से हमारा मोह छूट गया, तो सबसे पहला मोह है हमारा अपने साथ, उस मैं के साथ। और उस मैं के साथ का जब मोह होता है तो उसको कहा जाता है या स्वार्थ या अभिमान। दूसरा हमारा मोह होता है अपनी कर्मेंद्रिय से, मेरा, मेरा हाथ, मेरा पैर, इसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आजकल लोग अपने आप को बहुत ही संभालने का प्रयत्न करते हैं, मेरे शरीर को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और बाबा भी कहते हैं कि हाँ बच्चे, शरीर ये अंतिम शरीर है, वैल्यूबल है, उसका ध्यान रखो। लेकिन जब टू मच ये कर्मेंद्रिय के वशीभूत हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है कर्मेंद्रिय से जब मोह होता है तो उसको कहा जाता है पराधीनता आ जाती है, एक एक कर्मेंद्रिय की पराधीनता। देखना नहीं चाहते हैं लेकिन देख लिया, बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन बोल दिया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उस कर्मेंद्रिय के इतने परवश है, पराधीन है, इसलिए ये पराधीनता ये जैसे हमें जकड़ी हुई है। जिस तरह मोह जकड़ता है, ये हमारी अपनी कर्मेंद्रिय से इतना जब लगाव हो जाता है तो ये भी हमें जकड़ने लगता है। अच्छा, तीसरा फिर मोह कहाँ है? व्यक्तियों के साथ। और व्यक्तियों के साथ का जब मोह है उसको कहा जाता है लगाव, झुकाव। ये व्यक्तियों के साथ के मोह की निशानी है, जहां लगाव है और झुकाव है। वो व्यक्ति ने जो कहा सत्वचन, उसने जो कहा बस उसी को सुनना है, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो लगाव और झुकाव व्यक्तियों के साथ का मोह। अच्छा, उसके बाद चीज वस्तुओं के साथ का मोह, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा मोबाइल, उसके साथ का जो मोह होता है उसको क्या कहेंगे? आसक्ति। उसको कहा जाता है आसक्ति। ये सारे मोह के स्वरूप है और इन सब से हमें मुक्त होना है। अब उसके लिए क्या क्या स्मृतियां मिली है कि जिन स्मृति स्वरूप अगर हम हो जाए तो ये मोह से मुक्त होना आसान है। और इसीलिए अर्जुन ने फाइनल रिजल्ट में ये कहा, अब मैं मोह से मुक्त हो गया, किसी भी प्रकार का मोह अभी नहीं है मुझे, और मैं स्मृति स्वरूप हो गया, हर बात की स्मृति मेरे दिमाग के अंदर स्पष्ट हो गई। तो जो स्वयं से मोह है, जो स्वार्थ या अभिमान के रूप में प्रकट हो रहा है बार बार, उससे मुक्त होने की स्मृति बाबा ने कौन सी दी है? क्या दिया है? गीता के अंदर दूसरे अध्याय में आत्मा का लेसन दिया भगवान ने, क्योंकि सबसे पहला तो अपने साथ जो मोह है, मैंपन, उस मैंपन के साथ का जो मोह है, मैं फलाना हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। इसलिए बाबा ने कई बार हमें कहा है कि इसकी पहचान क्या है। मैं के साथ जब मोह होता है उसकी पहचान है अपमान। जहां अभिमान है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आएगी। किसी ने कुछ कह तो दिया, लग जाता है दिल को, उसने मुझे ऐसा कह दिया, माना उस मैं को जिसको मैं अहमियत दे रही थी उसको किसी ने जोर से जैसे दर्द पहुंचा दिया, ऐसे शब्द कहे जिस शब्द के कारण वो दिल में चुभ गई बात, तो अपमान फीलिंग हुआ। तो उसके लिए जो बाबा ने स्मृति हम बच्चों को दी है वो स्मृति है कि बच्चे तुम ये देह नहीं, बहुत शुद्ध, पवित्र, श्रेष्ठ, विशेष आत्मा हो। मुरली के अंदर, अव्यक्त मुरली में बाबा कितने टाइटल देते हैं, मेरे श्रेष्ठ आत्माएं, विशेष आत्माएं, ये मेरा रियल मैं है, जिसके कॉन्शियसनेस में हमें आना है, जिसमें स्मृति स्वरूप होना है। ये देह के स्मृति में जब हम आते हैं वो तो बहुत लो कैटेगरी की है, लेकिन जो सबसे ऊंची कैटेगरी का बाबा ने हमें स्वमान दिया, ये स्वमान के स्मृति स्वरूप, ये विधि है कि बच्चे स्वमानधारी बनो, तुम कौन सी आत्मा हो। कहा मास्टर सर्वशक्तिमान है, तुम पवित्र आत्मा हो, तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, तुम अपने अनादि स्वरूप को देखो, आदि स्वरूप को देखो, कितनी उच्च आत्मा हो, है ना। जब इस स्वमान में रहते हैं हम, तो वो अपनी देह से या उस मैं से जो हमारा लगाव है, उससे जो हमारा मोह है, अटैचमेंट है, उसको छोड़ना सहज हो जाएगा। जब तक ये मैं से अटैचमेंट होगा हमारा, देहभान से हमारा मोह लगा हुआ है, तो उससे कनेक्टेड कई बातें आ जाती है। किसी ने अगर ठेस पहुंचाई उस मैं को तो क्रोध भी आएगा, किसी को अगर आगे जाते हुए देख रहे हैं तो ईर्ष्या भी आएगी, किसी को अगर देखते हैं कि भाई हमारे से उसके अंदर ज्यादा कैपेसिटी है तो निंदा भी होगी। उस मैं को बचाने का प्रयत्न, कितना लगाव है हमारा उस मैं के साथ, कि ये सारी कमजोरियां जो आती है वो इसलिए आती है क्योंकि हमने एक गलत मैं के साथ अपने आप को जोड़ दिया, उसके प्रति हमारा मोह इतना अधिक है कि हम उससे मुक्त हो नहीं पाते, दिन प्रतिदिन उसकी दलदल में हम फंसते जाते हैं, नीचे ही गिरते जाते हैं। इसीलिए बाबा ने सबसे पहला लेसन आत्मा का दिया, और आत्मा का लेसन देते हुए हमें स्मृति दिया कि बच्चे तुम कौन सी आत्माएं हो, इतनी महान आत्माएं हो, भगवान के नूरे रत्न हो, सिक्की लधे हो, रोज याद प्यार नहीं मिलती है, तुम कितनी विशेष आत्माएं हो, अनेक प्रकार की विशेषताएं तुम्हारे अंदर समाई हुई है। ये स्मृति से वो समर्थी को जागृत करो, क्योंकि ये महीना है ही जनवरी महीना स्मृति स्वरूप से समर्थ स्वरूप का। तो बाबा ने हम बच्चों को उस मैं को जागृत करना, रियल मैं को जागृत करने के लिए जो हमें स्मृतियां दी है, तो वो देह अभिमान वाले मैं के साथ में जो अटैचमेंट है हमारी, उसको छोड़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि उससे हमने अपने आप को नुकसान भी बहुत पहुंचाया है। जैसे दुनिया में देखो, किसी बच्चे के हाथ में अगर चाकू आ जाए और खींचने जाएंगे, वो छोड़ेगा भी नहीं, अपने आप को घाव करता रहेगा, दर्द भी महसूस करेगा, चिल्लाएगा भी, रोएगा भी, लेकिन चाकू नहीं छोड़ना है। लेकिन छुड़ाना है तो युक्ति क्या है, कोई आकर्षक खिलौना उसको दो जिसमें कोई नुकसान भी न हो, जिससे उसकी उन्नति हो, जिससे वो कुछ सीखे, पढ़े, समझे, और जिसमें उसको आनंद आए। लेकिन जब तक वो नहीं देते हैं तो वो चाकू में ही क्या करता है, आनंद, और उसको ज्ञान नहीं है, इसलिए स्वयं को घाव भी कर रहा है, रो भी रहा है, चिल्ला भी रहा है, लेकिन चाकू नहीं छोड़ रहा है। और कोई अगर छीनने जाए तो शायद उसको भी चोट पहुंचा देगा, है कि नहीं? इसलिए उसको छुड़ाना है तो आकर्षक खिलौना उसके सामने रखो, यूं छोड़े यूं पकड़े। बाबा ने भी इसीलिए हमें स्व का बोध कराया, और ये स्व का बोध जैसे हुआ तो वो देह अभिमान वाला जो मैं है, जिससे हम अपने आप को घाव कर रहे थे, चाहे निंदा किसी की किया, किसी की ग्लानी किया, ईर्ष्या किया, द्वेष किया, अभिमान दिखाया, अपमान किया किसी का, ये सारे जो घाव कर रहे थे हम, जिससे दुख दर्द मिल रहा था, लेकिन छोड़ते नहीं थे, तो बाबा ने इतनी सुंदर विधि, अरे तुम कौन हो, तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, तुम पवित्र आत्मा हो, तुम सर्वशक्तिमान के संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान हो। और ये स्मृति हमारी जागृत की, तो धीरे धीरे वो चाकू कहां छूट गया पता चला, पता ही नहीं चला, और स्वयं से उस मैं से नष्ट मोहा बनना आसान हो गया। फिर भी कभी कभी पुराने संस्कारों के कारण क्या होता है, फिर भी आ जाता है, फिर भी खड़ा हो जाता है, लेकिन अब समझ में आ जाता है बहुत जल्दी कि अभिमान बोल रहा है। जैसे ही अगर उस मैंपन में आकर कुछ वचन निकाले तो अंदर में तुरंत रियलाइज हो जाता है कि यह अभिमान बोल रहा है। और उसके लिए बाबा ने स्मृति दिलाई फिर, अभिमान न बोले उसके लिए, कि बच्चे करण करावनहार करा रहा है। जहां बाप को ले आओ कि करण करावनहार करा रहा है, ये स्मृति को जागृत करो, तो उस समय आएगा मैं तो निमित्त हूं, तो निर्माणता सहज आ जाएगी। तो ये विधि है उस स्व के साथ के मोह से मुक्त होने की। अच्छा, फिर कर्मेंद्रिय से जो हमारा मोह है, जो अधीनता है, उस अधीनता को कैसे बाबा ने छुड़ाया, उसके लिए क्या स्मृति दिया, क्या स्मृति दिया? तुम अधिकारी हो। ये कर्मेंद्रिया क्या है? कर्मचारी है। और कर्मचारी के ऊपर तुम अधिकारी हो, तुम अपने अधिकार चलाओ उसके ऊपर, वो तुम्हें चलावे ऐसा नहीं। उसके लिए बाबा कई बार कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया, अपनी डायरी बाबा की थी, और जिसमें बाबा कहता था कि रोज रात को अपनी दरबार लगाओ और उस दरबार में अपने आप से बात करो, पूछो कि हे मन मंत्री, तेरे कर्मचारी सारे ठीक चले आज सारा दिन कि नहीं चले। रोज रात को अपनी दरबार लगाओ, और तुम मालिक है ये कर्मेंद्रिय के, अधिकारी है, तुम्हें उससे परवश नहीं होना है, तुम्हें उसको ऑर्डर देना है और ऑर्डर देते हुए उसको चलाना है, कि मैं अगर नहीं देखना चाहूं तो मुझे नहीं देखना है, मैं अगर किसी का परचिंतन नहीं सुनना चाहूं तो नहीं सुनना है। बाबा ने इसके लिए क्या कहा, बच्चे तुम किचड़े के डब्बे थोड़ी हो जो कोई भी आकर किचड़ा डाल दे तुम्हारे अंदर, कि फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, वो किचड़ा तुम्हारे अंदर क्यों डाल रहे हैं? कई बार बच्चे वश हो जाते हैं ना, परवश हो जाते हैं, और सुनने के भी शौकीन होते हैं, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और फिर वो कहानी में मिर्च मसाला बहुत कुछ पड़ता जाता है कि नहीं? सुनाने वाला भी देखता है, जब इसको सुनने का शौक है दो बात और अंदर ऐड करके सुना दो, तो क्या हो जाएंगे? फिर वो किचड़ा अंदर जो डाला, वो किचड़ा तो अंदर में घूमने लगेगा, है कि नहीं? बिलोना चालू हो जाता है और फिर अंदर से क्या निकलेगा? सुख मिलेगा। सुनने समय तो बड़ा सुख मिला, लेकिन जब अंदर बिलोना चालू होता है तो क्या होता है? परेशान होने लगते हैं, सुख नहीं मिलता है। और तब फिर अंदर में आता है, अरे फालतू मैंने उसकी बातें सुनी, दिमाग के अंदर किचड़ा डाला और देखो अभी योग ही नहीं लग रहा है। किचड़ा डालने के बाद योग लगेगा? फिर जब योग नहीं लगता है, देखते हैं दूसरे सबका बहुत अच्छा योग लग रहा है और मेरा तो मैं इधर उधर देख रही हूं, योग ही नहीं लग रहा है। अरे बाबा ये किचड़ा ले लो, बाबा ये किचड़ा ले लो। बाबा कहते तू लिया क्यों? अब मैं कैसे लूं उसको? अब तो भोगना पड़ेगा, लिया है तो फिर उसको हजम करना पड़ेगा। तुमने भोजन ही ये लिया है, अब वो भोजन जब बेकार का बासी भोजन खाएंगे, सड़ा हुआ भोजन खाएंगे तो क्या होगा? पेट में मरोड़े नहीं आएंगी क्या? आएगी। जब तक वो किचड़ा निकले नहीं तब तक क्या होगा? बेचैनी होगी या नहीं होगी? तो ठीक इसी तरह कर्मेंद्रिय के अधीनता कन रस, और उस कन रस के कारण जो परचिंतन की बातें सुनते गए फालतू बातें अंदर जाती रही, वो क्या करेगा? मरोड़े देगा नहीं देगा? और फिर कहेंगे बाबा योगी नहीं लग रहा है, योगी नहीं। तुरंत उसकी भोगना का अनुभव होता है और तब आता है, अब दूसरी बार इसकी बात तो कभी सुननी नहीं चाहिए, है ना? अंदर में आता हुई है, लेकिन जैसे ही वो आते हैं, अरे फलानी बात सुनी, क्या हुआ फिर? अरे पहले का अनुभव कम था क्या जो फिर करके खड़े हो गए? तो कर्मेंद्रिया कितना अधीनता में ले आती है, और इसीलिए बेचैनी का अनुभव होता है, योग नहीं लगता है, परेशान हो रहे हैं, रात को नींद भी खत्म हो जाती है, क्योंकि अब आता है मैं किसको सुनाऊं? अभी एक तो कन रस के अधीनता में आए, अब मुख की अधीनता में कि अभी किसी और के सामने उल्टी तो करूं, उसको किचड़ा दे दूं मैं थोड़ा, तो जो मेरी हालत है उसकी हालत भी ऐसी, उसका भी योग नहीं लगे। अब फिर किसको ढूंढा, और जैसे किसको ढूंढा उसको सुनाया, तब जाके थोड़ा क्या होता है? तो बाबा कहे ये जो पराधीनता है, अपने ही इंद्रियों के साथ इतना लगाव है कि बार बार ये इंद्रियां परेशान, उसके साथ का जो अटैचमेंट है वो छूटता नहीं है, इसीलिए तुम मालिक बन जाओ। कोई अगर सुनाने आए क्या कहेंगे आप? ये तो नहीं कहेंगे चुप करो मेरे सामने नहीं सुनाना है, कह सकेंगे आप? नहीं कह सकते हैं, भाई वो अपना दिल हल्का करने आई है तो मेरे को तो सुनना ही पड़ेगा ना। अरे ऐसा दिल हल्का होता है क्या कभी? तो अब अगर कोई आपको सुनाने आए तो आप अधिकारी बन करके क्या करेंगे? कैसे उसके ऊपर विजय पाएंगे? ये कर्मेंद्रिय की अधीनता के ऊपर विजय कैसे पाएंगे बताओ? कहो, देखो, है? हाँ, उसको ये कहे, देखो ये बातें कलयुग में नहीं होंगी तो क्या सतयुग में होंगी? ज्ञान के आधार से उसको भी मुक्त करो, उसको भी उस परेशानी से मुक्त करना है। और कहो तुम एक काम करो, बाबा को चिट्ठी लिखो और तेरे अंदर जो चल रहा है ना लिखो बाबा को और बाबा को लिख करके दे दो। बाबा ऑफर कर रहा है कि बच्चे मैं सारा किचड़ा लेने के लिए बैठा हूं, तुम इधर उधर नहीं उल्टी करते रहो, सारी गंदगी फैला रहे हो, उसके बदले तुम बाबा को चिट्ठी लिखो, पत्रको प्यार से, बहुत प्यार से बाबा को पत्र लिख करके सारी बातें जो अंदर चल रही है ना लिख दो बाबा को, और फिर योग कर, बाबा खींच लेगा सारा किचड़ा, तो इधर उधर फैलाना बंद हो जाएगा। बाबा को दे दिया ना, स्थान पर दो ना। बाबा इतना ऑफर कर रहा है कि बच्चे मैं सारा जो है आपका किचड़ा लेने के लिए ही बैठा हूं, पतित से पावन बनाने के लिए बैठा हूं, इसीलिए तुम इधर उधर नहीं डालो, इसकी उसकी अवस्था खराब नहीं करो, तुम पत्र लिखो। तभी तो बाबा कई बार कहते, कल भी शायद बाबा ने कहा, बच्चे पत्र ही नहीं लिखते हैं मेरे को, बच्चे लिखते ही नहीं है कभी, कभी पत्र लिख करके देखो कितना आनंद आता है। सारे दिन की बातें लिखो बाबा को, रोज रात को एक पत्र लिखो। भगवान इतना बड़ा 3 पेज का मुरली का पत्र हमें रोज लिखता है और हम आधा पेज का भी नहीं लिख सकते हैं क्या बाबा को? तो आधा पेज का तो लिखिए बाबा को कि बाबा ये हुआ, बाबा को बता दो, बाबा को सुना दो, और देखो दूसरे दिन मुरली में उसका जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलता है, अनुभव है ना, बाबा को फलानी बात, चलो लिखो नहीं, बाबा को सुना दो। इधर उधर सुनाने से तो कोई सॉल्यूशन मिलना नहीं है आपको, वो और ही टेस्ट ले लेकर के आपसे पूछते जाएंगे और ही आपका दर्द बाहर निकालते जाएंगे, और ज्यादा दर्द होगा। तो उसके बदले बाबा को सुनाओ, बाबा को सारा लिख करके दे दो, अगर लिख नहीं सकते तो बाबा को सुना दो, सुना करके हल्के हो जाओ, बाबा में शक्ति भरेगा। जब बाबा को फिर योग करते हैं तो बाबा शक्ति भरेगा और उस इंद्रियों के ऊपर जो अधीनता है वो अधीनता समाप्त होने की शक्ति भरेगा। इसीलिए गीता के अंदर भी भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन तुम अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त करो, स्वराज्य अधिकारी बनो। बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं, बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी बनने से ही तुम मन को सहज जीत सकते हैं और मन जीते जगत जीत बन सकते हैं, क्योंकि मन तो बहुत परेशान हो जाएगा। इसलिए ये कर्मेंद्रिय की अधीनता समाप्त करने के लिए ये स्वमान धारण करो, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, मैं राजा हूं इन कर्मेंद्रिय की, मैं जो देखना चाहूं, मैं जो बोलना चाहूं, मैं जो सुनना चाहूं वही मैं सुनूं। इसलिए कोई अगर आपके सामने किचड़ा डालने के लिए आवे आपके दिमाग के अंदर तो क्या कहो उसको? देखो एक काम करो, तुम बाबा को पत्र लिखो, अगर नहीं लिख सकते बाबा को सारा सुना दो, सुनाएंगे तुम हल्के हो जाएंगे, ये मेरा अनुभव है। ऐसे करके उसको उतना किचड़ा लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, लेने की जरूरत है क्या मुझे, मैं क्यों किचड़े का डब्बा बनूं? लेकिन उसको भी कहो तुम अपना किचड़ा बाबा को दे दो, बाबा भस्म कर देगा, अग्नि के अंदर भस्म होता है ना, बाबा उसको भस्म कर देगा, सर्वशक्तिमान है, भस्म हो जाएगा और तुम हल्के हो जाओगे। अनुभव करके देखो, ये मेरा अनुभव है, और दूसरे दिन देखना बाबा मुरली के अंदर तुम्हें इसका जवाब दे देंगे। ये है सच्चे विश्व कल्याणकारी बनना, उसका किचड़ा हमें लेने की जरूरत नहीं, लेकिन उसको भी उस किचड़े से मुक्त कर देना, तब वो अपनी इंद्रियों के अधीनता से स्वतंत्र हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। अच्छा फिर तीसरा है, व्यक्तियों से मोह। तो तो व्यक्तियों से मोह के बंधन से मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या युक्ति बताई बाबा ने? सर्व संबंध, देखो मालूम है सब कुछ, फिर भी क्लास चाहिए ना नष्ट मोह के ऊपर। कहने का भावार्थ ये है कि बाबा ने कहा बच्चे सर्व संबंधों का रस, सुख का रस, सर्व संबंधों में जो सुख मिलता है उस सुख का रस तुम मेरे से लो। भक्ति में गाया त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सख त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव कह दिया, लेकिन एक भी संबंध का अनुभव नहीं किया। और बाबा के बनने के साथ ही बाबा ने कहा बच्चे सर्व संबंध मेरे साथ छोड़ो। पिछले संडे की मुरली थी ना, अव्यक्त मुरली, कैसे सर्व संबंध बाबा से जोड़ना, कैसे उसको माता पिता भी बनाना है, कैसे उसको जीवन साथी भी बनाना है, सखा रूप में भी देखना है, उसको बच्चा भी बनाना है, वारिस भी बनाना है। सर्व संबंधों का सुख बाबा ऑफर कर रहा है, एक भी संबंध की कमी नहीं करो, क्योंकि एक भी संबंध की कमी होगी तो वो व्यक्ति आपको आकर्षित करेगा। तो देहधारियों के साथ मोह शुरू कैसा है? आकर्षण से। पहले तो आकर्षण होता है और आकर्षण से फिर आकर्षण बढ़ते 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 लगाव होने लगता है, उसके बिना चलता नहीं है, फिर झुकने लगते हैं, वो जो कहेगा सतवचन सतवचन, हाँ सही बोल रहा है सही बोल रहा है, और फिर मोह में फंस जाते हैं। फिर दर्द होने के, अगर उसने आपकी बात नहीं सुनी तो दर्द तो होगा ही होगा, या उसकी कोई बात ऐसी आपने देख ली हजम नहीं हुई तो दर्द तो होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ तो इसीलिए कहा कि देहधारियों को क्या समझो कि बस एक्टर से पार्ट बजाने के लिए इस जन्म में हमारे साथी है, बहुत अच्छा सबके साथ हमें पार्ट बजाना है, लेकिन मेरे सर्व संबंध के साथ बाबा के साथ, और बाबा के साथ हर एक संबंध अमृत वेले से कैसे बाबा को याद करना, ये भी बाबा ने सिखाया कि अमृत वेले कैसे संबंध से याद करो, विधाता वरदाता से वरदान लो, अपनी झोली भरो, है ना। फिर मुरली क्लास में जाते हैं तो कौन सा, मैं भगवान का विद्यार्थी हूँ, कितना ऊंचा नशा चढ़ाया, मैं भगवान का विद्यार्थी हूँ ये देखो, और पढ़ाई करो, एक एक बात को याद करो। फिर दिन में सखा रूप में उसके साथ, भी जीवन साथी के रूप में उसके साथ में, है ना, कभी बच्चा बन खेलो, थक जाओ तो माँ की गोद में आकर के सो जाओ। कितना अच्छा बाबा मुरली थी, सारी मुरली मैं समझती हूँ, हर एक को याद रह गई थी ना, पूरी मुरली याद है कैसे सर्व, जब बाबा से सर्व संबंधों के सुख का रस प्रतिदिन अगर लेते जाएंगे, भरते जाएंगे भरते जाएंगे, तो ये देहधारी संबंध हमको खींचेंगे। तोड़ निभाना जरूर है, रहना वही है, सबके साथ तोड़ निभाने की ताकत आ जाएगी, ताकत आएगी। उनको भी बाबा के उस सर्व संबंधों का रस आप अनुभव कराएंगे, वो भी कहेंगे आपको पता नहीं आपके पास बैठने से भी हमको बड़ा शांति मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है, पता नहीं ऐसा क्या है आपके अंदर, लेकिन आपके पास आते हैं बैठते हैं, भले बातचीत भी न करो लेकिन ऐसा लगता है कि शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारा योग बाबा से कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, सुबह से लेकर रात तक हमने अपनी दिनचर्या बनाई हुई है, एक संबंध के रसना का अनुभव ले रहे हैं, और जैसे ही एक एक संबंध के रसना का अनुभव ले रहे हैं तो नेचुरल है वो वाइब्रेशन क्या फैलेंगे। तो एक एक संबंध के स्मृति स्वरूप बनो, है ना, एक एक संबंध का अनुभव करो, बाबा से सुख लो। जब ऐसे सुख लेने के आदति बन जाएंगे तो देहधारियों से वो अटैचमेंट नहीं होगा, लगाव झुकाव नहीं होगा, वो आकर्षण नहीं होगा, लेकिन उसको भी आत्म रूप में देखेंगे, वही दृष्टि वृत्ति हमारी डेवलप होंगी और फिर हम उसको भी बाबा के संग जोड़ सकेंगे, उसको भी बाबा से सर्व संबंधों के सुख का रस लेने का अनुभवी बनाएंगे कि तुम भी लो, मैं भी ले रही हूँ, तुम भी लो, देखो कितना सुख मिलता है हर कर्म करते हुए। ये भी नहीं है कि एक ही बैठ करके बाबा को याद करते रहो, बाबा मेरे सखा है, बाबा मेरे साथी है, नहीं, हर कर्म करते यथार्थ कर्म योगी कैसे बनना है, और वो कर्म योगी जब बनते जाते हैं तो उसी कर्म योगी स्थिति से कर्मातीत अवस्था सहज हो जाएगी। कोई भी कर्म का बंधन हमें बांधेगा नहीं, क्योंकि हर वक्त हम हर कर्म करते हैं बाबा की याद समाई हुई है, कोई ना कोई संबंध की स्मृति स्वरूप होकर के कर्म कर रहे हैं, तो कर्मातीत है वो, कर्म हमें बांधते नहीं है। लेकिन व्यक्तियों के साथ के लगाव में आकर के जब कर्म करते हैं तो वो कर्म बंधन तो हमें बांधेंगे या नहीं बांधेंगे, वो तो जरूर बांधेगा, है ना। और फिर चौथा है चीज वस्तुओं के साथ मोह आसक्ति। तो चीज वस्तुओं को बाबा ने ये तो नहीं कहा फेंक दो या यूज नहीं करना है, यूज करो, लेकिन मालिक बन के यूज करो या ट्रस्टी बन के यूज करो। ये बाबा ने सिखाया कि बच्चे ये भगवान का दिया हुआ सेवा अर्थ है, और जब सेवा अर्थ है उसको यूज करो, लेकिन मैं ट्रस्टी हूं, ये चीज मेरी नहीं बाबा की है, तो बाबा की स्मृति उसमें आ जाएगी। गाड़ी है किसकी है, कहेंगे बाबा की गाड़ी है। कहते हैं ना दुनिया में भी कहने में क्या कहते, भगवान की दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है, और फिर अगर कुछ हो जाए तो सुनाते ना कोर्स में किसी को, सिखाते हैं सुनाते हैं। लेकिन इसी प्रकार तो क्या होगा जब ये अंदर में आएगा बाबा का है, बाबा ने सेवा अर्थ दिया है, तो जब ये बात स्मृति में आएगी तो उसकी संभाल भी करेंगे, यूज भी करेंगे, मालिक बन करके यूज करेंगे, आसक्ति नहीं होगी, और वो गुम होने का या उसका व्यर्थ यूज होने का डर नहीं। आज जैसे दुनिया में भी ये शिकायत लोगों की चल रही है, मोबाइल है, लेकिन बच्चे इतने परवश हो गए मोबाइल के, कहां कहां क्या क्या साइटों में घूम रहे हैं, क्योंकि आजकल पढ़ाई भी उसी के ऊपर हो गई है, इसलिए मोबाइल देना भी पड़ता है, नहीं दो तो मुश्किल, लेकिन उस मोबाइल से क्या क्या कर रहे हैं, और उसके हाथ से अगर लेने लगो तो क्या करेंगे, कितना घर में हंगामा हो जाता है, अनुभवी है ना सभी, कितना हंगामा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। दुनिया के अंदर कहा जाता है कि आज डिवोर्स के भी कारण क्या है, मोबाइल है। तो आज बच्चे बिगड़ने के कारण भी क्या है, मोबाइल है, बहुत बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहे कि उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है सदुपयोग, क्योंकि कहीं न कहीं वो जो आसक्ति है उन चीजों के साथ, वो मन को किस किस दिशा में भटका रही है, कहां कहां भटका रही है पता ही नहीं चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। और जब बहुत उसमें चले जाते हैं, डूब जाते हैं, तब देखो तो बाहर निकलना ही मुश्किल होता है, और मनुष्य क्या कर देता है, अपनी जिंदगी को एकदम तबाह कर देता है। इसलिए बाबा कहे साधन है, मालिक बनकर के यूज करो, یوز کر کے پھر اس کو رکھ دو. اتنا اپنے آپ پر کنٹرول ہو, جتنی کنٹرولنگ پاور اپنے اندر ڈیولپ کریں گے, رولنگ پاور اپنے اندر آئے گی, وہ سادھن ہمیں پریشان نہیں کرے گا. لیکن یہ سادھن ہمیں یوز کرنے کے لیے ہے, یوز کیا رکھ دو, پھر اس کا مس یوز نہیں کرنا ہے. مس یوز کر کے ادھر ادھر اس میں گھومنے کا نہیں ہے, نہیں تو یہ بہت بھٹکاتا ہے. کئی بار ایک ماتا جی میرے پاس میں آئے, 80 سال کے تھے, ماتا جی آئے میرے پاس میں, کہنے لگے یہ واٹس ایپ میرا چلتا نہیں ہے. میں نے کہا کیا کرنا ہے ماتا جی واٹس ایپ کو کر کے, 82 سال. میں نے کہا ماتا جی آپ کی ایج کتنی ہے؟ کہا 82 سال کی. 82 سال کی ہے اور کہتی میرا واٹس ایپ نہیں چلتا ہے نا, یہ کیوں نہیں کھل رہا ہے, دیکھو تم کیوں نہیں کھل رہا ہے. میں نے کہا چھوڑو ماتا جی, اگر نہیں کھل رہا ہے تو چھوڑو, اچھا ہے یوگ تو لگے گا. بولا ہاں یہ بات تو تم نے ٹھیک کہی, میرا یوگ ہی ختم. وہ ٹنگ بجتا ہے نا, میرے کو لگتا ہے کس کا میسج آیا, دیکھوں وہ ٹنگ بجتے ہی میرے اندر آتا ہے یہ کس کا میسج. تو یوگ میں بیٹھی ہوں اور وہ آواز کرتا ہے تو میں ترنت لے کر کے, میرا یوگ ہی ختم ہو گیا ہے. میں نے کہا تو بند کر دو. کہا لیکن اتنی اچھی اچھی باتیں بھی تو آتی ہے اس کے اندر, ہے نا. تو تب میں نے پوچھا ماتا جی ایج کیا ہے آپ کی؟ بولے 82 سال. میں نے کہا 82 سال میں کیا کرنا ہے ابھی, بابا کو یاد کرو نا. بولے وہی تو, اس میں باتیں بہت اچھی آتی ہے نا, پرشارتھ کی باتیں بھی تو بہت اچھی اچھی آتی ہے. لیکن میں نے کہا پرشارتھ کی باتوں کو آپ زیادہ دیکھتے ہو یا دوسری باتیں زیادہ دیکھتے ہو؟ ہاں بولے وہ تو دوسری باتیں میں چلا جاتا ہے, اب لوگ بھیجتے ہیں تو کیا کرے, ہے نا. پھر ایک مہینہ کہتے اچھا چلو ایک مہینہ میں بند کر دیتی ہوں, میرا یوگ لگے کم سے کم. ایک مہینہ بند کر دیا, لیکن یوگ میں بیٹھتی بڑی پریشان ہو جاتی ہے, ابھی کسی کا میسج ہی نہیں آ رہا ہے, کسی کا میسج ہی نہیں آ رہا ہے نا. پھر چالو کر دیا, پھر چالو ہو گیا اس کا میسج کا. تو اسی لیے آج بابا کہے کہ بچے یہ پرادھینتا کیا کر رہی ہے, براہمنوں کو بھی کیا کر رہی ہے, یوگ لگنے دے رہی ہے, کہیں نہ کہیں یوگ کو توڑنے کے نمت بن جاتی ہے. اور اگر وہ موبائل گر گیا اور ٹوٹ گیا تو ارے باپ رے, جیسے دل ہی ٹوٹ گیا ہو ان کا. یہ حالت ہے, یہ ہے پروش, یہ ہے اس کے ساتھ کا موہ. اسی لیے بابا کہے یہ سمرتی سوروپ بنو, کہ یہ سادھن جو ملے ہیں بابا کی سیوا کے لیے ملے ہیں, اور سیوا کیا بس اس کو رکھ دو, پھر آگے اس میں گھومو پھرو نہیں, ٹھیک ہے نا. تو دیکھو پھر کیسے اپنے ستھتی کو آپ دھیرے دھیرے اونچا اٹھانے لگیں گے. تو نشٹ موہا سمرتر لبدھا بننے کے لیے جو دو باتیں گیتا کے انتیم ادھیائی میں ودھی کے روپ میں بتائی ہے وہ ہے من منا بھو, ہے نا, من منا بھو, نرنتر میری یاد میں رہو تو یہ سب پرکار کے موہ جو ہے اس سے چھوٹنا آسان ہو جائے گا. اور دوسرا سرو دھرم پریتیج مامیکم شرنم برج, تم سرو دھرم, کون سے دھرم ہے آپ کے پاس میں؟ ایک ہی دھرم ہے, کتنے دھرم ہے؟ گرہست دھرم ہے, گرہست دھرم میں جڑا ہے کہ نہیں جڑا ہے؟ بچے کے لیے پتر دھرم کہو, پتا کے پرتی کا دھرم کہو, ماتر دھرم کہو, پھر ہمارے سماج کے لیے, تو کتنے دھرم. اس لیے کہا سرو دھرم پریتیج, جس جس کو تم یہ سمجھ رہا ہے یہ میرا دھرم ہے, یہ میرا دھرم ہے, میں پتر ہونے کے کارن یہ میرا دھرم ہے, میں پتا ہونے کا کارن میں یہ میرا دھرم ہے, میں ماں ہونے کا کارن یہ میرا دھرم ہے, سرو دھرم پریتیج ماں میں کم شرنم رج, تو مجھ ایک کی شرن میں آ جاؤ, बाबा तुम्हारे सारे धर्म निभाएंगे, बाबा तेरे सारे धर्म निभाएंगे। कईयों ने समझ लिया कि भाई हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये धर्म वो धर्म। बाबा कहते वो धर्म की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, गीता के अंदर भी वो धर्म की बात ही नहीं किया है अर्जुन को, क्योंकि उस समय कोई मुस्लिम धर्म था ही नहीं, उस समय कोई क्रिश्चियन धर्म था ही नहीं, खाली हिंदू धर्म ही था। फिर भी जब गीता में ये कहा सर्व धर्म परित्यज, अर्थात ये जो देह के धर्म माने हुए हैं कि भाई गृहस्थ धर्म है, या हम पिता है तो पिता का मेरा धर्म ये है, मैं पुत्र हूं तो पुत्र का धर्म ये है माता पिता के प्रति, ये सारे धर्म जिसको मैंने अपना समझ लिया, ये सब धर्म को छोड़, तब तुम नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। और जैसे ही ये सारे धर्म छोड़े, माम एकम शरणम रज, हे प्रभु अब मैं तेरी शरण में आ गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो नष्टो मोहा सहज हो गया और स्मृति स्वरूप हो गया। सारे धर्म बाबा कहे तुम्हारे नहीं, ये जितने भी धर्म है तेरे जीवन के अंदर, ये सारे धर्म भी मैं पूरा करूंगा, तू मेरी शरण में आ, मैं सबको संतुष्ट करूंगा। और ये अनुभव है कि नहीं, जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं, अपना धर्म समझते हुए नहीं कर पाते हैं, लाचार हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, हे प्रभु हे प्रभु अब तेरी शरण है, अब तू जो करेगा वही सही करेगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, कहते हैं ना। और जैसे ही बाबा को जिम्मेवारी दे दी तो बाबा उस धर्म को निभा के आता है कि नहीं आता है। तो इसीलिए ये दो विधि है गीता में भी बताई हुई, मन मनाभव और सर्व धर्म परित्यज मामेकम शरणम। तो नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा बनना आसान हो जाएगा। ठीक है ठीक है। तो अभी ये चारों प्रकार से मोह से मुक्त होकर के जाना है, यहां से मुक्त होके जाएंगे ना माताएं, क्या करेंगे भाई, बस पहला सेशन ही आपको ये बहुत बड़ा हाई डोज मिल गया है। हाँ तो सारी भट्टी में तो फिर बहुत बड़े बड़े हाई डोज मिलेंगे। अच्छा ओम शांति।